श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
No!
कनेक्शन की बात करते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है। आनंद के सब रूप, प्रेम के सब रूप मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा है, लेकिन अधिकतम जोर दिया गया है भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। वो भी बालपन की लीलाओं के ऊपर। विचार कीजिएगा, ऋषि वेद व्यास जी ने जब भागवतम को लिखा, उसके पीछे कारण क्या होगा? कहा जाता है 18 महापुराणों को संकलित करने के पश्चात, 4 वेदों को संकलित करने के पश्चात महाभारत, भगवत गीता जो महाभारत का अंश है, उन सब को लिखने के पश्चात वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं आई। सारे विश्व का, सारे सृष्टि का ज्ञान कूट कूट के भर डाला, लेकिन मन में शांति नहीं आई। कहते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने प्रेरणा दी, तुमने सब कुछ लिखा है लेकिन कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं लिखी हैं। शायद तभी भागवत पुराण की रचना हुई होगी, उसको भागवतम भी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण भी कहते हैं। भागावतामा भागवतम। कहा गया है जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी करेंगे तो आपके मन में शांति आएगी। उन पे ध्यान लगाएंगे, आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। मानव का जो मन है वो एक लेक अर्थात सरोवर की भांति है। सरोवर का जल अगर उथल पुथल हो रहा हो तो आपको सरोवर की तह नजर नहीं आएगी। कहते हैं जब हवाएं ना चल रही हों या शांत हों, सरोवर का जल एकदम से आपको आपके ही प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करता है। आपके शरीर का प्रतिबिंब सरोवर में दिखता है, आपका रिफ्लेक्शन सरोवर में दिखता है। आपने बहुत सी फोटोग्राफ या चित्र देखे होंगे, सरोवर के इर्द गिर्द पेड़ खड़े होते हैं और पेड़ों का प्रतिबिंब सरोवर में नजर आ रहा होता है। लोग कहते हैं वाओ, व्हाट ए फोटोग्राफ। पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हो रहा होता है। विचार कीजिएगा, अगर सरोवर में आपने कूड़ा करकट फेंक रखा हो, धूल डाल दी हो बहुत ज्यादा, मिट्टी डाल दी हो, गंद डाल दिया हो, पानी मैला हो गया हो, तो आप अति प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे, अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाएंगे, देखेंगे भी तो साफ नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका मन एक सरोवर है,
लेकिन मन के अंदर से आपको मिट्टी को निकाल के गंध को निकाल के रबिश को निकाल के बाहर फेंकना है उसे कहा गया क्लिनजिंग प्रोसेस आज को लोग नदियां साफ करते हैं नदी के बाद चोरियां सागर साफ करते हैं लोग कहते नहीं है टू मच प्लास्टिक इन द ओशन कई जगह बीचेस के ऊपर गंद पड़ा होता है डर होता है पानी पीछे पानी के पीछे ना चला जाए गंद लोग उसको उठाते हैं जाके बड़े बड़े शिप बड़ी बड़ी बोट्स जाती हैं नदियों में सरोवर में समुन्द्र में सफाई करने हेतु जब हमारे मन का सरोवर दूषित है तो सर्वप्रथम हमें उसको भी साफ करना है भागवतम भागवतम को पढ़ने से सुनने से आपके अंतर के सरोवर में सफाई होती है वो खासकर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को सुनने से विचार कीजिएगा आप गोपियां सदैव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी घर में खाना बना रही है ध्यान खाना पे रोटी जल जाती सब्जी जल जाती यहां तक कि हाथ भी जल जाता सदैव मगन है ध्यान में कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए मथुरा की ओर गोपियां तब भी कहते थे हमारे कन्या यहीं पर है वो देखो सामने पेड़ पे बैठा है वृक्ष पे बैठे हुए करना बांसुरी बजा रहे हैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों का बहुत सताते थे छोटे नटखट बालक थे ना गोपियां अपना मटका लेके पानी भरने जाती है यमुना पर कहती काना हो काना दर हाथ तो लगा दे मेरे मटके उठवा के मेरे सर पे रखवा दे चलो शब्दों में है कृष्ण पानी से भरी मटकी है थोड़ी मेरी सहायता कर दो मेरे सर पे रखवा दो कि गोपियों के सर पे तीन तीन चार चार मटके होते थे और एक दो मटके हाथ में भी होते थे कहते हैं कान्हा ने मना कर दिया ना 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 मैं नहीं करूंगा गोपियां जैसे तैसे मटके को सर पर रख कर पानी भर के घर की ओर जा रही हैं जब घर पहुंच जाते कन्हैया ये बोलते लाओ मैं उतार दूं गोपी कहती क्या बात है जब तुम्हें कहा कि मटका उठा के हमारे सर पे रखवा दो तुमने मना कर दिया और आज कह रहे हो मैं उतार देता हूं काना बोले मैं बोझ कम करने आया हूं बढ़ाने नहीं आया हूं आई रिमूव योर बर्डन आई डू नॉट ऐड द बर्डन भगवान कृष्ण की लीला में प्रत्येक लीला में हर चीज में हर दृश्य में हर सांस में एक संदेश है कहते हैं गोपियां माखन बना बना के टांगती थी कन्हैया तोड़ देते थे मटकी को आके थोड़ा माखन खा जाते थोड़ा नीचे गिर जाता थोड़ा पांव में लग जाता थोड़ा वहां से भाग जाते गोपियां पीछे पीछे भागती थी पकड़ने के लिए। तात्पर्य यह है, गोपियां कैसे जाती पीछे, कन्हैया के पांव के निशान जो माखन थे या दूध थे या लस्सी थे, लथपथ होते थे, वो अपने चिन्ह अपने मार्क छोड़ जाते थे, गोपियां उसके पीछे जाती थी। कहने का तात्पर्य, फॉलो माय फुटस्टेप्स, मेरे कदमों पर चलो, मेरे कदमों के पीछे चलो, मुझ तक पहुंच जाओगे। भगवद गीता में कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करेगा, मैं उसको जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त कर दूंगा। What an assurance! जो अंतकाल में इस मेरा स्मरण करेगा, मैं उसको जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त कर दूंगा। No more birth, no more death। विचार करना होगा आपको। क्या आपको पता है आपका अनंत काल, आपका अंतकाल कब आएगा, किस दिन किस समय किस क्षण आपकी मृत्यु ब्रह्मा ने निर्धारित की है? नहीं पता। अगर आज इसी वक्त इसी क्षण यमराज आपके घर का द्वारा खटखटाए, जो आवश्यकता नहीं है, सीधा भीतर आ जाए, बोले माय सन लेट्स गो, चलो पुत्र हमें लेने आया हूं, क्या उस वक्त आप परमात्मा को याद कर पाएंगे? अगर सारी उम्र आप अपनी इच्छाओं के पीछे ही भागते रह गए, तो अचानक से क्या आप ऐसा कर पाएंगे, इच्छाओं को त्याग के लोग जाने की तैयारी कर देंगे? नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े महात्मा नहीं कर पाए, क्योंकि हमने पूरी उम्र प्रैक्टिस नहीं करी, हमने अभ्यास नहीं किया, हमने कोशिश नहीं करी। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा, मेरे स्वरूप पर ध्यान लगाएगा, जब रात को आप सोने जाते हैं, जरा विचार कीजिएगा एक पल के लिए, रात को आप सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है स्लीप, नींद, निंद्रा, जो मृत्यु की तरह है। स्लीप इज द शॉर्ट डेथ। आप सो गए, सुबह उठे 8 घंटे के बाद, हो सकता है 6 घंटे के बाद, उसी प्रकार से डेथ इज द लॉन्ग स्लीप। आपकी मृत्यु हो गई, लंबे टर्म के लिए सो गया, फिर जाग गया, फिर जन्म हो गया आपका। लेकिन जब रात को आप सोने जाते हैं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? क्या आपके मन में गायत्री मंत्र चल रहा होता है? क्या आपके मन में परमात्मा का नाम चल रहा होता है? क्या आपके मन में हनुमान चालीसा चल रही होती है? या आपके मन में या आपके ध्यान में भगवान का स्वरूप आ रहा होता है? शायद एक दो विरले व्यक्ति ऐसे हों जो ऐसा कर पाते हों। अधिकतर लोग जब सोने जाते हैं, अपनी समस्याएं लेकर सो रहे होते हैं, या समस्याएं या इच्छाएं। जरा सोचिएगा आप, कम से कम सोते वक्त तो ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं भाई मेरे। प्रयास करना होगा। भगवत गीता आपको सत्य की ओर लेकर जाती है और भागवतम आपके मन में भक्ति के बीज उत्पन्न करती है, खासकर कृष्ण लीलाएं। गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिया, जाके वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और गोपियां चिल्ला रही हैं, कान्हा हमारे वस्त्र लौटा दो, हम जल से बाहर कैसे आए, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। लोग कहते कितना गंदा काम किया भगवान श्री कृष्ण ने। नहीं, भगवान श्री कृष्ण आपके वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। गोपियों को अहंकार था कि वह नारी हैं, पहला। दूसरा, नग्न अवस्था में जाके जल में स्नान नहीं करना चाहिए कहा जाता है, उससे नदी का अपमान होता है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण इन वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं, वो चोरी करते हैं उन वस्त्रों के जिन्होंने आपकी आत्मा को ढका हुआ है। हमारी आत्मा के ऊपर इच्छाओं की धूल है, भगवान श्री कृष्ण उस धूल को हटाते हैं। विचार कीजिएगा, लेकिन अगर हम उस युग में होते, भगवान कृष्ण के साथ होते, तो हम कह सकते थे कि कन्हैया मेरी सहायता करो, लेकिन इस युग में आपको कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में, पहाड़ की चोटियों में, समुन्द्र के तह में, जानते हैं भगवान का वास कहां पर है? मैंने सुना था एक बार भगवान विष्णु के मन में आया, भाई लोग बड़े दुखी हैं, जाके मैं सहायता करता हूं। कहते नीचे आ गया धरती पे, लोगों को पता लग गया कि भगवान विष्णु इस एड्रेस पे रह रहे हैं, ये पता उनका, घर के बाहर लाइन लग गई लोगों की। सुबह जैसे फाटक खुला, लोग भागे वहां से बारी बारी, भगवान नारायण बैठे हैं सामने। अगर आपके सामने भगवान बैठे हो, आपका पता लग जाए इस एड्रेस में रहते हैं, वहां पहुंच जाए आप और आपको उनसे मिलने दिया जाए, आप क्या करेंगे? पहला व्यक्ति गया नारायण के, मैं बोला भाई ऐसा है कि मेरे को बहुत समस्या, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी सहायता करो। दूसरा बोलता मेरे पास जॉब नहीं है, लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई। तीसरा बोलता भाई मेरी पत्नी की सेहत ठीक नहीं है। चौथा बोलता मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। सब अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने एड्रेस चेंज कर दिया। वो चले गए दूसरी जगह। छोटा यहां पर तो लोग शायद ज्यादा समझदार होंगे, वहां भी बात फैल गई कि वहां विष्णु आए हैं, नारायण आए हैं। सुबह फाटक खुला, बाहर लाइन लगी हुई लोगों की, वही सेम टू सेम कहानी, बिल्कुल वही जो पुराने एड्रेस पे हुई थी, पुराने पते पे हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं। भगवान नारायण सहायता करना चाहते हैं आपकी। भगवान ने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्होंने अपना फिर एड्रेस चेंज कर लिया, वो आपके हृदय में आके बैठ गया। ताकि हर आदमी भगवान के पीछे भागता रहेगा, तो इजी काम है, मैं तुम्हारे दिल में आके बैठ जाता हूं, यू कैन टॉक टू मी। 24 hours a day, 7 days a week. उसे हम बोलते हैं इनडवेलर, उन्हें हम बोलते हैं इनर वॉइस, उन्हें हम बोलते हैं वॉइस ऑफ द कॉन्शियंस, उन्हें हम बोलते हैं आत्मा की आवाज। अब आपके भीतर बैठे हैं भगवान, आप बात कर लो, कौन रोक रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी, भगवान के पास मोबाइल नहीं है। फेसबुक पे भी कोई आपको स्टेटस नहीं मिलेगा, उसमें वहां भी नहीं है, ट्विटर पे भी नहीं है, ईमेल में भी नहीं है, भाई क्या करोगे आप? तो अंतर की यात्रा करनी होगी। भागवत तुम हमारे को बताती है, भक्ति को अपनाते हुए अंदर की यात्रा करो। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तत्व, मा से मुक्ति। भक्ति होगी तो ज्ञान आएगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य होगा तो तत्व अर्थात रियलाइजेशन होगा, तत्व होगा तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपके अंतर का रास्ता भक्ति से जुड़ा है, इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने से ऑटोमेटिकली मन भक्ति की ओर दौड़ता है और आप अपने ही अंतर में उनको पाएंगे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री साईं राम।